शांति, आदरणीय उषा दीदी का हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। सुख को अवसर दो अपने जीवन में आने का, इस सुंदर विषय पर आप सभी को क्लास कराएंगे। माउंट आबू में आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। आदरणीय उषा बहन जी 36 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित, आपका जन्म जाम्बिया अफ्रीका के एक धार्मिक परिवार में हुआ और 12 वर्ष की अल्प आयु में ही आप बाबा के इस ज्ञान से के संपर्क में आए। 1980 से 1992 तक भारत के अनेकानेक स्थानों पर जैसे बॉम्बे, हैदराबाद आदि स्थानों पर आप राजयोग शिक्षिका रही। 1985 की भारत एकता युवा पदयात्रा में अनेक आत्माओं के अंदर आपने आध्यात्म की अलग जगाई। आपने 1990 में नागार्जुन फर्टिलाइजर एवं केमिकल हैदराबाद में सेल्फ मैनेजमेंट का कोर्स आपने ही आरंभ किया। आप अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती की प्रखर वक्ता हैं। अनेक टीवी चैनल्स पर आपके राजयोग शिविर, तनावमुक्त जीवन आदि प्रसारित होते हैं। रामायण और गीता पर बहुत ही गहन रिसर्च की आपने और इसका आध्यात्मिक रहस्य बताकर अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय दिया। बाबा के इस बेहद यज्ञ मुख्यालय में आप 26 वर्षों से राजयोग शिविर से अनेक वीआईपी आत्माओं को लाभान्वित किया। राजनीतिक विंग की आप मुख्यालय संयोजिका है। आपके लिए दो शब्द, आप इस धरा पर चैतन्य चमकते सितारे हो। फरिश्तों का आप मॉडल बाप दादा के बेहद प्यारे हो। आपकी मधुर वाणी ने अनेक परमात्मा रहस्यों को खोला और बेहद यज्ञ की सेवा अर्थ शिव बाबा ने आपको चुना। आदरणीय उषा दीदी,
ओम शांति। आज का जो विषय है कि सुख को एक अवसर दो जीवन में आने के लिए। सुख आना चाहता है लेकिन हम उसको मौका ही नहीं देते हैं अपने जीवन में आने के लिए। बहुत सुंदर अभी हम सभी ने बाबा की याद का ये मधुर गीत सुना कि बाबा की याद में कितना सुख मिलता है। आदरणीय दादी जी का, दादी जानकी जी का भी ये फेवरेट गीत है कि बाबा तेरी याद में सुख मिलता इलाही है। और ये दादी का फेवरेट गीत इसीलिए है क्योंकि ये दादी का अनुभव है कि सचमुच बाबा की याद में कितना सुख इलाही मिलता है। और इसलिए जैसे बाबा कई बार हम बच्चों को मुरली में कहते हैं कि प्रकृति या ये सद्गुण ये सब आपकी सेवा में आना चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि मेरे मालिक मेरा प्रयोग करे, मेरा अनुभव करे। परंतु कहीं न कहीं हम इतने उलझे हुए हैं अपने जीवन में बाबा के बनने के बाद भी, यह दिव्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी कई प्रकार की उलझनों में ऐसे उलझे हुए हैं कि इन सद्गुणों को हम मौका ही नहीं देते हैं कि वो आए और हमारे जीवन को संवारना शुरू करें। इसी प्रकार सुख हर एक इंसान जीवन में सदा सुखी होना चाहता है, यही एक चाह रहती है कि सदा सुखी होना चाहते हैं। लेकिन सदा सुखी कैसे बनेंगे? सदा सुखी होने के लिए क्या करना होगा हमें? वैसे दादी जानकी अपने क्लास में ये बात हमेशा सुनाती है कि पवित्रता के दो बच्चे हैं, सुख और शांति। इसलिए अगर सुख को आने देना है तो अवश्य पवित्रता को जीवन में धारण करना है। हम बाबा के सभी ब्राह्मण बच्चे पवित्र ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी सुख के लिए तरस जाते हैं कि अरे थोड़ा तो सुख मिल जाए। वो सुख का अनुभव जैसे दादियों को होता है, वो सुख का अनुभव हमें भी हो। तो उसके लिए अवसर कौन से हम उसको दे ताकि वो हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए और सदा रहे, फिर निकल न जाए। तो सुख को छीनने के मुख्य आधार तो हम सभी जानते हैं कि कैसे सुख हमारे जीवन से चला जाता है। तीन बातें हैं जो हमारे सुख को खत्म कर देती है, और वो तीन बातें हैं देहाभिमान, दूसरा है भय और तीसरा है तनाव। ये तीन चीज जो है, चिंता को हो, तनाव को हो, भय और देहाभिमान, ये हमारे अंदर के सुख को छीन लेती है, हमें सुख का अनुभव करने नहीं देती है। तो सुख का अनुभव करने के लिए हमेशा हमें एक सही चुनाव करने की आवश्यकता है, और वो चुनाव कि जिससे स्थायी सुख रहे जीवन के अंदर। बहुत सुंदर कहानी याद आती है मुझे कि एक बार तीन अनुभवी बुजुर्ग मुसाफरी करते करते, यात्रा करते करते जा रहे थे। अचानक सर्दी बहुत बढ़ गई, बर्फ गिरने लगी, तो सोचा कि थोड़ा समय विश्राम कर लेते हैं, और विश्राम करने के लिए एक स्थान पर बैठे, लेकिन सर्दी बढ़ती जा रही थी। सामने एक मकान था, मकान में एक परिवार रहता था, दो बच्चे थे, माता पिता थे और बच्चों के दादा दादी थे। तो बच्चों ने देखा, माँ से कहा कि देखो कोई बाहर में बैठे हैं, बहुत ठंडी लग रही है, ऐसा लग रहा है। तो पिता ने कहा उनको, देखो बुला के ले आओ घर के अंदर, थोड़ा गर्म हो जाए। तो वो औरत बाहर निकली और उसने तीनों को कहा कि आप बाहर सर्दी में ठिठुर रहे हैं, आप अंदर आ जाइए, घर के अंदर थोड़ा गर्म हो जाएंगे। तो तीन बुजुर्ग में से एक व्यक्ति ने कहा कि हम तीनों में से कोई भी एक ही आपके घर में आ सकते हैं, आपको चुनाव करना होगा कि हम तीनों में से आप किसको बुलाना चाहते हैं। तो कहा अच्छा, आपका परिचय? तो पहले ने कहा मैं स्वास्थ्य, दूसरे ने कहा मैं समृद्धि हूं, और तीसरे ने कहा मैं प्रेम। अब हम तीनों में से कोई एक ही आपके घर में आ सकते, तीनों नहीं आ सकते। जिसको दूसरे शब्द में कहे तो हेल्थ, वेल्थ और प्रेम, तीनों में से कोई एक ही आ सकते हैं। अब आपको चुनाव करना होगा कि आप किसको बुलाना चाहते हैं। तो उसने कहा मुझे परिवार वालों से पूछना होगा। कहा पूछ लीजिए। तो महिला अंदर गई, सारा परिवार बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि वो तीनों बुजुर्ग में, वो कहते हैं कि तीनों में से एक ही आ सकते हैं, हमारे घर में तीनों नहीं आ सकते हैं। अब हमें चुनाव करना होगा कि किसको बुलाए। तो एक है हेल्थ स्वास्थ्य, दूसरा है वेल्थ समृद्धि, और तीसरा है प्रेम। तो सास ससुर ने कहा, बहू हमारी इतनी बीमारियां हैं, ऐसे करते हैं स्वास्थ्य को बुला लेते हैं, हम स्वस्थ तो हो जाएंगे, बहुत रूप से मदद भी कर पाएंगे फिर आप लोगों के जिम्मेवारी को उठाने में। तो पति ने कहा कि अरे इतने टेंशन है, पैसे की इतनी खींचातानी हो रही है, ऐसा करते हैं हम वेल्थ को ही बुला लेते हैं, पैसे से तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक कर लेंगे और कई प्रॉब्लम्स भी हल हो जाएंगे। अब डिस्कशन चल ही रही थी तो उतने में वो बच्चे जो थे खेल रहे थे, बहुत छोटे थे, तो बच्ची ने खड़ी होकर कहा, क्यों नहीं हम प्रेम को बुला लेवे। पिता ने कहा कि चलो बच्चों की ही मान लेते हैं, बच्चों ने जो कहा उसी को बुला लेते हैं, प्रेम को ही बुला के ले आओ। महिला बाहर आई और कहा, आप में से जो प्रेम है वो अंदर आ जाए। तो जैसे ही प्रेम आया तो उसके पीछे स्वास्थ्य भी आ गया और उसके पीछे पीछे समृद्धि भी आ गई। तो परिवार ने कहा, आपने तो कहा एक ही आ सकते, तो कहा अगर आपने स्वास्थ्य को बुलाया होता था तो एक ही आता था, अगर आपने समृद्धि को बुलाया होता तो भी एक ही आता, लेकिन जहां प्रेम होगा ना वहां ये दोनों साथ साथ चलेंगे। कहने का भावार्थ यही कि हमारे सामने भी जब भी कोई अवसर आते हैं चुनाव करने का, कि हमें किसको चुनना है, तो हम कभी कभी इमीडिएट प्रेजेंट को देख लेते हैं, लॉन्ग रन को नहीं देखते, या विशाल बुद्धि के आधार से या ज्ञान की परिपक्वता के आधार से नहीं सोचते हैं, और तुरंत फायदे की बातें जहां होती है उसका चुनाव हमेशा हम कर लेते हैं। लेकिन जैसे दादी जी की वो बात याद आई कि जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है, तो बच्चों ने कहा प्रेम चाहिए, निश्चलता, वो शुद्धि मन की, जिसके कारण उन्होंने प्रेम का आवाहन किया। और पिता सोच रहा था कि सारी प्रॉब्लम्स हम धन से खत्म कर देंगे, तो उसी स्वार्थ को देख रहा था। माता पिता अपने स्वार्थ को देख रहे थे कि हम स्वस्थ हो जाएंगे तो हम आपको मदद कर लेंगे, आपकी जिम्मेवारी उठाने में आपको मदद कर लेंगे। तो सही चुनाव जीवन में करना बहुत आवश्यक है, तब सुख को अवसर दे सकते हैं अपने जीवन में आने के लिए। लेकिन ये सही चुनाव के लिए जीवन में कुछ सिद्धांतों को भी हमें समझना होगा, जो कुदरत के सिद्धांत है, जो इटर्नल लॉज ऑफ नेचर है, उसको समझना होगा। क्योंकि सिद्धांत को हम तोड़ नहीं सकते हैं जीवन में, जहां सिद्धांतों को तोड़ना मरोड़ना चालू किया वहां भी सुख को हम अवसर नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए जीवन के कुछ सिद्धांत आवश्यक है, और ऐसे ही एक पहला सिद्धांत है, जो देंगे वही मिलेगा, व्हाट यू गिव यू गेट। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा घूम घूम करके। इसीलिए किसी ने सही कहा है कि रास्ते में अगर चलते चलते हमने कांटे बिछाए, कहीं ऐसा ना हो सके कि उसी रास्ते से वापस खुद को गुजरना पड़े, वो कांटे खुद को ही चुभेंगे। इसलिए फूलों को बिछाते जाएं, और अगर उस रास्ते से वापस गुजरना होगा तो फूलों के ऊपर ही चलना, कितना सुखद अनुभव होगा। तो जो दूसरों को देंगे वही वापस घूम करके हमारे पास किसी न किसी रूप से आना ही है। इसीलिए कहा जाता कि जो देंगे वो वापस आएगा, वही प्राप्त करेंगे। आप किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा, आप किसी को शांति देंगे शांति मिलेगी, आप किसी को खुशी देंगे खुशी मिलेगी, आप नफरत देंगे नफरत आएगी, आप किसी को गाली देंगे गाली मिलेगी। जो देंगे वो वापस आना ही है, ये अटल सिद्धांत है नेचर का, प्रकृति का सिद्धांत है, जिसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। इसीलिए सुख को जीवन में आने के लिए यही अवसर देना होगा कि हम अच्छा देते जाएं तो वापस वो अच्छा जो आएगा वो सुकून का अनुभव कराएगा। इसी प्रकार का दूसरा सिद्धांत है जीवन का, और वो जीवन का दूसरा सिद्धांत है जिसको कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर मन के अंदर, बाबा भी हमेशा हम बच्चों को मुरली में यही बात कहते हैं कि नकारात्मक और व्यर्थ विचार से अपने आप को मुक्त करना होगा। अभी तक भी अगर मन के अंदर चलो नकारात्मक नहीं है लेकिन व्यर्थ विचार चल रहा होगा तो ये भी एक प्रकार की अपवित्रता ही मानी जाती है। तो जहां व्यर्थ और नकारात्मकता है वो कभी सुख को मन के अंदर आने नहीं देगा, वो उस द्वार को हमेशा बंद कर देगा। इसलिए सुख को जीवन में आने के लिए सकारात्मकता से मन को संवारना होगा, और जितना हम मन को सकारात्मक भावनाओं से विचारों से संवारेंगे उतना सुख या सुकून का अनुभव जीवन के अंदर होगा। और ये सकारात्मकता पनपती कैसे है, किस मन के अंदर पनपती है, तो जहां शुद्धि है, मन के अंदर का मैल धुल जाना चाहिए। जितना मन का मैल धुलता जाएगा उतना ही सकारात्मकता पनपने लगेगी। अगर मन मैला होगा तो जैसे आज बाबा ने तीन खातों की बात की, न दुआओं का खाता न पुण्य का खाता प्राप्त होगा। तो इसीलिए जीवन के अंदर अगर तीनों खाते को बढ़ाना है तो मन को शुद्ध साफ और सकारात्मकता से भरना होगा। और उसके लिए ही बाबा हम बच्चों को निरंतर ये ज्ञान की बातें सुना सुना करके मन के मैल को धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। और उसी के लिए बाबा हम बच्चों को सावधान भी करते हैं और कहते हैं बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो, क्योंकि जिस दिन मुरली मिस हो जाती है उस दिन वो मन साफ नहीं हो सकता है, और मन ही साफ नहीं तो सुख को कहां से आने देंगे, सुख को कैसे स्थान दे सकेंगे। तो दूसरा सिद्धांत जो है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, सुख को एक अवसर दो आने के लिए, और उसके लिए सकारात्मकता को प्रथम स्थान दो मन के अंदर, नकारात्मकता और व्यर्थ को समाप्त करते जाए। भले दुनिया के अंदर हम जानते हैं कि बहुत सारी हेरा फेरी शब्दों की बातों की हो जाती है, बहुत पॉलिटिक्स है, लेकिन अगर उन पॉलिटिक्स में उलझने लगे तो मन को कभी सुखी नहीं बना सकते, न योग लगेगा न मन बाबा में लगेगा। इसीलिए सुख मिलता इलाही तब है जब हम उन सभी कीचड़ पट्टी से अपने मन को फ्री कर देते हैं, और कोई बात की प्राप्ति हो न हो, स्थूल रूप में कोई प्राप्ति हो न हो, लेकिन कम से कम हमें हमारा आंतरिक खजाना, जो हमारी वास्तविकता है, उसका अनुभव करने का तो एक अवसर मिलेगा, उस तरफ तो वापस जा सकेंगे हम, नहीं तो हम बहुत दूर चले जाएंगे अपनी वास्तविकता से भी और बाबा से भी। तीसरी बात के चुनाव सही करने के लिए, तो विचारों का चुनाव भी एक चुनाव है, क्या देना है उसका भी एक चुनाव है, और साथ ही साथ तीसरी बात कि कभी कभी सुख को छीनने वाली चीज जो है वो है कई परिस्थितियां, समस्याएं जो जीवन में आ जाती है। कहते जब से ये परिस्थिति आई है ना, तब से लेकर के जीवन में सुख ही नहीं रहा है। ये अक्सर कंप्लेन सुनते हैं, शिकायत होती है कि जब से ये बात हो गई, जब से ये परिस्थिति आ गई, जब से ये समस्या जीवन में आई है, तब से लेकर सुख चैन सब छीन गया है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई मेजॉरिटी परिस्थिति और समस्याओं का कारण क्या है, कहां न कहां अपनी ही कमजोरी का प्रयोग जहां होता है वही कारण बनता है समस्याएं और परिस्थिति को निर्मित करने के लिए। दूसरी बात कि परिस्थिति समस्याएं जो आई है, जैसे कहा जाता कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह उसके प्रति भी हमारा चुनाव सही होना चाहिए कि कौन सा दृष्टिकोण हम अपनाएं, सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं या नकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं, ये चुनाव हमारा होगा। अक्सर जब भी कोई परिस्थिति समस्याएं आती है जीवन में, तब बाबा को याद तो करते, हर एक उस समय विशेष बाबा को याद करता है, बहुत लगन से बाबा को याद करने लगते हैं कि बाबा ये परिस्थिति दूर हो जाए। और देखा जाता कि जहां सच्ची लगन से याद किया होता है तो कई बार बाबा की अनुभूति होती है कि बाबा हाजिर हो जाता है, वो समस्या गायब हो जाती है, वो परिस्थिति खत्म हो जाती है, ये महसूस करते हैं। और जब भी ये अनुभव होता है तो हमारा निश्चय बाबा के प्रति और अधिक दृढ़ हो जाता है और हमारा विश्वास बाबा में बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी वो समस्या खत्म होने में, परिस्थिति को खत्म होने में कुछ देर लग जाती है, और उस वक्त कभी कभी अंदर में संशय भी आता है कि पता नहीं बाबा सुन रहा है नहीं सुन रहा है मेरी बात, इतना बाबा के सामने हम मन्नतें कर रहे हैं लेकिन क्यों नहीं बाबा सुन रहा है, देर क्यों लगा रहा है बाबा मेरी ये बात को देखने में या परिस्थिति को सुलझाने में। लेकिन हो सकता है कि वो देर इसीलिए है क्योंकि हमारी धैर्यता और सहनशीलता को बाबा निखार रहा है, क्योंकि अंतिम पेपर जो आने हैं उसमें धैर्यता बहुत आवश्यक है और सहनशीलता की बहुत आवश्यकता होगी। तो इसीलिए ये परीक्षाएं अगर आई भी है जीवन के अंदर और उसमें अगर देर लग रही है तो बाबा हमारी धैर्यता और सहनशीलता को निखार रहा है, उसको पॉलिश कर रहा है। अगर उस दृष्टिकोण को अपना करके देखे तो बड़ा सुकून मिलेगा, लगता है बाबा साथ है, ये नहीं कि बाबा साथ नहीं है उस वक्त, देर लगा रहा है तो साथ नहीं है, ये नहीं, साथ है और वो मुझे पॉलिश कर रहा है। और फिर भी अगर नहीं मिला, जो चाहना रखी वैसे रूप से वो परिस्थिति सुलझी नहीं या वो चीज नहीं मिली जो हमने चाहा, तो समझो कि बाबा के पास एक बढ़िया उपहार, उससे भी अधिक अच्छा उपहार आपके लिए है। इसीलिए जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें कई बार पता नहीं होता है कि बाबा के मन में क्या है, बाबा हमें क्या देना चाह रहा है। और इसीलिए बाबा जब बच्चों को देना चाहता है तो बढ़िया से बढ़िया ही चीज देगा। अगर आपकी योग्यता है, पात्रता है, तो जिस तरह लौकिक में भी पात्रता और योग्य बच्चे को पिता बढ़िया से बढ़िया चीज ला करके देता है, क्योंकि उसको पता है किसका सदुपयोग ही होना है, ठीक इसी तरह बाबा के पास भी कोई बढ़िया से बढ़िया उपहार होगा आपके लिए। इसीलिए जो आपने चाहा वो बहुत कम है, इसलिए वो बाबा देना नहीं चाहता है आपको। मुझे याद आता है एक सत्य घटना, यही ये डायमंड हॉल के अंदर ही एक भाई अपने अनुभव में सुना रहे थे कि उसने जैसे ही बीकॉम पास किया, एमकॉम भी किया, और एमकॉम करने के बाद उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। एक बैंक में उसको जॉब मिली, बहुत अच्छी जॉब थी। उसने सोच लिया कि बस ये बढ़िया जॉब मिल गई है, अब इसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे, प्रमोशन भी मिलती जाएंगी और आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कोई बैंक में कुछ ऐसा कांड हुआ और उसमें वो ऐसा फंस गया कि उसके ऊपर सारा इल्जाम आ गया और उसको वो जॉब छोड़नी पड़ी। तो जॉब जब छोड़नी पड़ी, इतनी अच्छी जॉब उसको छोड़नी पड़ी, तो उसको बहुत दुख हुआ। कहा, मैंने बाबा को बहुत याद किया कि बाबा इतनी मेहनत से ये जॉब मिली थी और वो भी छीन गई और मेरा तो कोई दोष है ही नहीं उसमें। लेकिन पता ही नहीं चलता था कि ड्रामा उसमें क्या कल्याणकारी है, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा था। एक साल इंतजार किया, इतनी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन एक साल तक भी उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। उतने में एक दिन किसी ने आकर उसको कहा, तुम बैठा है फ्री, घर में बैठा है, क्यों नहीं कुछ और आगे पढ़ाई कर लो? या बोले, और क्या करूं, एमकॉम तो कर लिया, अभी और आगे क्या करूं? तो उसने कहा, ये आईएएस का फॉर्म आया है, बैठे बैठे भर दो, तुम तो वैसे ही इतने इंटेलिजेंट रहे हो अपने स्टूडेंट लाइफ में, तेरा जनरल नॉलेज इतना अच्छा है, क्यों नहीं ये फॉर्म भर लो। फॉर्म भर दिया उसने, सोचा चलो जब तक जॉब मिले, बीच बीच में जॉब के लिए भी ट्राई करता रहा, मिल गई तो छोड़ दूंगा, आधे में ही छोड़ दूंगा, ये सोच करके उसने वो फॉर्म भर दिया। और सचमुच तब तक उसको जॉब नहीं मिली और वो आईएएस बन गया। आईएएस बनने के बाद जो मिला उसको, तो कहा तब मुझे समझ में आया कि वो जो बैंक की नौकरी नहीं तो मैं छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन छुड़ाने के लिए ड्रामा ने कैसा खेल रचा, क्योंकि बाबा मेरे लिए, बाबा ने कुछ बढ़िया रखा था लेकिन उसको मैं देख नहीं पाता था, इसलिए जब जॉब छूटी तब बहुत दर्द हुआ। और ये भी सोचा कि क्यों अन्याय हुआ, बाबा ने क्यों मेरे साथ न्याय नहीं किया, क्यों मेरे ऊपर ये इल्जाम आया, मैंने कुछ नहीं किया, बहुत बाबा से मैंने युद्ध किया। लेकिन तब मुझे 2 साल के बाद महसूस हुआ कि ड्रामा में क्या कल्याण समाया हुआ था उस जॉब छूटने में भी। तो इसीलिए का धैर्यता और सहनशीलता को निखार रहा था वो समय भी और बाबा भी, और उसके बाद जो उपहार उसको मिला उससे जो सुकून का अनुभव हुआ वो बहुत अधिक था। तो जीवन के अंदर कई बार कई बातें ऐसी आती है, कई परिस्थिति ऐसी आती है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इसमें ड्रामा में क्या कल्याण होगा, लेकिन जब देखेंगे तो पता चलेगा। भले थोड़ा वक्त निकालना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो फ्रूट्स होंगे वो बहुत ही सुखदायी होंगे। तो इसीलिए हर परिस्थिति और समस्या को देखने का नजरिया का चुनाव हमें करना होगा कि कौन सी नजरिया, कौन सा दृष्टिकोण हम अपनाना चाहते, तो सुख को अपने जीवन में आने का अवसर दे सकेंगे। चौथी बात कि सुख को जीवन में आने के लिए अधिकतर मनुष्य जो उलझन में फंसा हुआ है आज संसार में, वो है देह और देह के संबंधों के उलझनों में फंसा हुआ है। और ये देह और देह के संबंधों की जाल ऐसी है कि कभी कभी भले बाबा इतना हम बच्चों को ज्ञान देते हैं और कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, लेकिन फिर भी ये जाल एक ऐसी जाल है, मीठी जाल, जिसको हमेशा बड़ी दीदी कहती थी मकड़ी की जाल है ये। और ये मकड़ी की जाल में कैसे कई बार हम फंस जाते हैं कि देह और देह के, जब अपनी देह को भी भूलना है तो देह के संबंध के प्रति जो हमारा एक भाव है, लगाव है, जो भी है, उसमें क्यों फंस रहे हैं हम? सदा सुखी होना है तो उसके लिए भले सबके अंदर जो अच्छी बात है उसको एप्रिशिएट जरूर करें हम। एप्रिशिएट करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उसी की बातों को याद में ले आना, उसकी हर बात अंदर में या उसका चेहरा बार बार सामने आना, तो ये देह और देह के संबंधों के जाल में फंसने वाली ही बात है। हाँ, उसके जीवन से हम भी प्रेरणा ले कि हम भी अपना जीवन ऐसा बनाएं, लेकिन वो देहधारी की याद में, बाबा की कुछ दिन पहले की मुरली थी कि देहधारी को याद करना भी धर्मराजपुरी की सजा के हकदार बनाता है। इतना कड़ा शब्द बाबा ने मुरली में, थोड़े दिन पहले की मुरली में, पिछले हफ्ते की मुरली में ही बाबा ने कहा। कहने का भावार्थ मेरा ये है कि हरेक की विशेषता को जरूर देखो। बहुत सुंदर एक बात इसके ऊपर याद आती है मुझे कि एक बार एक व्यक्ति ने बहुत भक्ति की, भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और पूछा आप मांगो, जो मांगना चाहो हम दे देंगे। तो उसने भगवान से कहा कि भगवान मुझे सदा सुखी होना है, ऐसा कोई मंत्र बताओ, ऐसी कोई विधि बताओ, मैं जीवन में दुखी न हूं, सदा सुखी रहूं, ऐसी कोई बात मुझे बता दो या वो चीज मुझे दे दो, मैं दुखी होना नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुझे सदा सुखी होने का की विधि बताता। कहा ठीक है, विधि बता दो। तो जैसे वो भक्ति मार्ग में यात्रा पर कई लोग जाते हैं तो कावड़ लेके जाते हैं, ऐसे कावड़ नहीं होता है जो इसमें श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को बिठाया था, तो भगवान ने उसको एक कावड़ दे दिया और कावड़ में एक तरफ सफेद कपड़ा लपेटा हुआ था, एक तरफ काला कपड़ा लपेटा हुआ था। भगवान ने उसको वो काला कावड़ दे करके कहा कि देख, ये कावड़ जो लेकर के तुम चलेगा जीवन के अंदर, सदा सुखी रहेगा। कहा इससे कैसे मैं सदा सुखी रहूंगा? तो कहा उसकी विधि है कि काला कपड़ा हमेशा पीछे रहना चाहिए, सफेद कपड़ा हमेशा आगे रहना चाहिए, तो सदा सुखी रहेगा। अगर गलती से भी काला कपड़ा आगे हो गया, सफेद कपड़ा पीछे हो गया, तो सदा दुखी रहेगा। कहा ठीक है, सदा सफेद को आगे रखूंगा, काले को पीछे रख दूंगा। अब ये सफेद कपड़ा और काला कपड़ा है क्या चीज, उसके अंदर है क्या चीज? तो भगवान ने कहा कि जैसे तुम जीवन की यात्रा में चलोगे, सभी कई लोगों से मिलोगे, बहुत देहधारियों से मिलना होगा तुम्हारा, और हर एक के अंदर गुण और अवगुण दोनों है। जब भी तुम्हें कोई भी मिले और अवगुण दिखाई दे तो पीछे डाल देना, काले कपड़े में डाल देना, उसको सामने नहीं रखना, उसको कभी सामने नहीं रखना। सामने क्या रखना? उसके गुण जो है उसको सदा सामने रखना और उसके साथ व्यवहार में आना, सदा सुखी रहेगा। इसीलिए हम भी भगवान के सामने जाते हैं तो अक्सर यही प्रार्थना करते हैं, मेरे अवगुण चित न धरो प्रभु जी, मेरे अवगुण चित न धरो, है ना? तो अवगुण चित पर नहीं धरना, उसको पीछे डाल देना, उसके तरफ ध्यान भी नहीं देना, और सफेद कपड़ा माना उसके गुणों को देख करके गुणों को सामने रखना जीवन के अंदर और व्यवहार में आना, ये सदा सुखी होने की विधि है। मनुष्य ने कहा ठीक है, और मनुष्य चलने लगा जीवन के अंदर, और चलते चलते जब भी किसी से मिला, किसी से बात किया, संबंध में आया, हमेशा उसके अवगुण को पीछे डाल देता था, सामने गुणों को रखता था और उसी के साथ व्यवहार करता था और सदा सुखी रहा। सतयुग त्रेता युग दो युग तक सदा सुखी रहा। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आया, एक दिन वो सोया हुआ था और अचानक पृथ्वी पर हलचल होने लगी और उस हलचल में हड़बड़ा करके उठा तो गलती से काला कपड़ा आगे हो गया, सफेद कपड़ा पीछे हो गया। और तब से लेकर के जब से चलना शुरू किया तो जीवन में सदा दुखी दुखी रहने लगा, क्योंकि काला कपड़ा जो आगे आ गया, किसी के गुण दिखाई देते तो हम पीछे डाल देते, उसको चित्त पर नहीं रखते हैं, उसको सामने नहीं रखते हैं। और जब भी किसी से व्यवहार में आते हैं तो क्या देख करके व्यवहार, अवगुण को सामने रखते हुए व्यवहार करना जब से शुरू किया तब से लेकर के दुख को अवसर दे दिया जीवन में आने का, और सुख तब से लेकर के जीवन से बाहर हो गया। इसीलिए सुख को अपने जीवन में अवसर देना है, वापस स्थान देना है, तो उसके लिए हर एक के गुणों को देखो, विशेषता को देखो, एप्रिशिएट करो, उसके उससे प्रेरणा लो जीवन के अंदर। लेकिन वही व्यक्ति की याद बस जाए हमारे अंदर, बाबा भूल जाए, क्योंकि उसको भी बाबा हमेशा कहते कि उसको भी विशेषता देने वाला कौन है, बाबा है ना, बाबा ने उसको ऐसे बनाया, तो अगर बाबा ने उसको ऐसे बनाया तो बाबा मुझे नहीं बना सकता है क्या? आप भी अगर इस तरह से बाबा को याद करना शुरू करो तो बाबा जरूर आपके अंदर भी वो विशेषता भर देगा। विशेषता को सामने रखकर व्यवहार जरूर करो, अवगुण को सामने रख कर के व्यवहार नहीं करो। आज से लेकर ये कावड़ पुनः बदली करना है, काला कपड़ा पीछे सफेद कपड़ा आगे, तभी सतयुग में जाने के लिए तभी सतयुग में जा सकेंगे। क्योंकि सतयुग तो है ही सुख के संबंध की दुनिया, जहाँ हर संबंध में भी इतना सुख मिलता है, तो इसीलिए दुख के बंधन सब समाप्त, सुख का संबंध आरंभ करना है तो ये कावड़ को पुनः बदली कर देते हैं आज के बाद। और आज के बाद बदली करके हम सदा सुखी होने वाले मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात कि देह और देहधारियों को याद करने के बजाय बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ करके सर्व संबंधों का रस हम बाबा से अनुभव करें, और जब बाबा से सर्व संबंधों के रस का अनुभव करेंगे तो सदा सुखी स्वतः हो जाएंगे और इस तरह सुख को अवसर देंगे अपने जीवन में आने के लिए। तो इसीलिए सर्व संबंध हमारा बाबा के साथ, अपनी देह को भी भूलना है और देहधारियों को भी भूलना है, और हर एक के साथ फिर भी जब भी आमने सामने आओ, व्यवहार में आओ, संबंध में आओ, क्योंकि सन्यासी तो नहीं बनना है हमें, हमें बाबा के परिवार में ही रहना है, और जब बाबा के परिवार में रहना है तो हर एक के अंदर गुण अवगुण दोनों है। जब भगवान से ये कहते हैं मेरे अवगुण चित न धरो, तो आज से हम भी ये मंत्र अपना ले कि हम किसी के अवगुण को चित नहीं धरेंगे, धरेंगे नहीं धरेंगे, आज के बाद किसी के अवगुण को चित नहीं धरेंगे और सदा सुखी होने के इस मंत्र की विधि का प्रयोग करेंगे। फिर पांचवी बात कि और कौन सी उलझन है, एक तो नकारात्मक विचारों की उलझन में, व्यर्थ विचारों की उलझन में फंसे हुए हैं, दूसरा जैसे कहा कि परिस्थितियां और समस्याओं की उलझन में फंसे हुए हैं, तीसरा कहा देह और देह के संबंधों की उलझन में फंसे हुए हैं, चौथा साधन और सुविधाओं के उलझन में फंसे हुए हैं। जब तक ये उलझने रहेंगी तब तक सुख को आने का अवसर नहीं दे सकते हैं अपने जीवन के अंदर। साधन बुरी चीज नहीं है, बाबा भी कहते हैं कि ये साइंस के साधन आपके लिए ही बने हुए हैं, लेकिन इसके प्रयोग करने की एक विधि है। और प्रयोग करने की विधि कौन सी है उसकी? उसके प्रयोग करने की विधि है कि मालिक बन के प्रयोग करो, ये साधनों के गुलाम बन करके प्रयोग में नहीं आओ। जितने ये साधनों की गुलामी में चले जाएंगे तो बाबा भी भूल जाएगा, बाबा की बातें भी भूल जाएंगी, अमृत वेला छूट जाएगा, है ना? खास करके आजकल मोबाइल की माया ऐसी हो गई है, और उसमें भी व्हाट्सएप की माया तो ऐसी माया है कि बात मत पूछो, लगे रहेंगे कहाँ भी बैठे होंगे तो उनको लगे रहेंगे उसी में, अच्छे विचार ही भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी वो अच्छे विचार पढ़ने में और भेजने में इतने लग जाते हैं कि हमें टाइम का एहसास नहीं होता है। रात में देर से सोने की आदत पड़ने लगती है, सारा दिन चेक करने का टाइम नहीं मिला, रात को चेक कर लेते हैं और रात को ही भेजना चालू कर देते हैं। तो जब रात को ही करना तो अमृत वेला तो मिस होगा ही फिर। तो इसीलिए मालिक बनकर के प्रयोग करें, गुलाम बनकर के प्रयोग में ना आए। नहीं तो यही साधन सुविधा के जब गुलाम हो जाएंगे तो इतना हमें गुलामी के या अधीनता में ले आएंगे कि उससे हमारा ये ब्राह्मण जीवन का जो सुख है, बाबा के साथ का जो सुख है, वो भी सब छूट जाएगा। इसीलिए जरूर है, नहीं तो जैसे ही वो घंटी बजती है तो लगता है किसका मैसेज आया। देखे देखे योग में बैठे होंगे, वाइब्रेशन पर भी रखा तो वहां भी देखे किसका मैसेज आया। तो ये तो अधीनता हो गई ना एक प्रकार की। तो इसीलिए अधीनता न हो, हाँ मालिक बन करके प्रयोग करो। उसका एक नियम रख लो आप जीवन में कि भाई ये टाइम से ये टाइम, आधा घंटा एक घंटा हम अच्छे विचारों को भी भले आदान प्रदान करो, लेकिन सारे दिन देखते रहो, जहां भी बैठे हैं देखते रहो, ये एक एडिक्शन हो जाता है। और ये एडिक्शन कई बार आपको ब्राह्मण जीवन के सुख से वंचित कर देगा, बाबा के साथ के योग से आपको वंचित कर देगा। और कई बार हम क्लास में भी देखते, क्लास में बैठे हैं व्यक्ति, वहां पर भी सोचते मुरली तो हमने इसी में पढ़ लिया ना, मुरली तो सुन लिया ना, अब चेक कर लेते हैं यहाँ बैठना तो है कि भाई हाँ नियम अनुसार नेमीनाथ बन करके बैठना भी है हमें क्लास में, लेकिन मुरली तो पढ़ लिया सुन लिया, कभी चेक कर लेते हैं तो वो एक घंटा लगा देते हैं अपने मैसेजेस पढ़ने आदि में। साधन सुविधाएं अच्छी है, मालिक बन के प्रयोग करो तब तक बहुत अच्छा है, नहीं तो उसमें अगर उलझने लग गए तो ये उलझन कभी कभी हमें अति इंद्रिय सुख से वंचित कर देंगे। बाबा की याद का, बाबा के साथ का, बाबा के साथ के हर सर्व संबंधों के सुख का रस अनुभव करने नहीं देगा। तो इसलिए इस गुलामी से अपने आप को जरूर छुड़ाना होगा, मुक्त करना होगा। ये हमारे लिए ही साधन बने हुए हैं, लेकिन उसको मालिक बनकर के प्रयोग अवश्य करें, गुलामी में नहीं। और कई बात हम देखते हैं कि एक तो साधन सुविधा के साथ साथ दूसरा जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ज्ञान का मनन चिंतन जितना हम करेंगे तो उतना बाबा के साथ का अनुभव कर पाएंगे। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं बाबा से प्यार है, उसका प्रमाण यही है कि मुरली से प्यार, मुरलीधर से प्यार है, ये सबूत है। और उसी मुरलीधर से जो सुख अनुभव किया गोपियों ने, तो जो बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो जाकर के कि वो सुख क्या होता है। तो इसी तरह वो सुख जो अति इंद्रिय सुख है, वो सुख कौन सा है और वो कैसे प्राप्त किया ये गोपी वल्लभ की गोप गोपियों ने, जिसका वर्णन शास्त्र में या भागवत में आता है कि कैसे वो गोपियां किस तरह से उस प्रेम रस में दीवानी हो गई थी या प्रेम रस में खो गई थी, अगर ये हम सभी का ही गायन है, ये भागवत हमारा गायन है, तो ये गायन ये हमारा ही अनुभव है कि अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। मुझे याद आता है कि प्रकाशमणि दादी जी का ये अनुभव, बड़ी दादी जी के साथ कई बार हम लोग रात में जब गुड नाइट करने के लिए जाते थे और दादी के पास बैठते थे, दादी मुरली सुनाते सुनाते कभी ऐसी कोई बात आ जाती थी तो अपना अनुभव सुनाती थी। और उसमें दादी ने एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाया था कि जब वहां हैदराबाद सिंध में थे, कराची में, कराची की शायद बात है, कराची में थे बाबा के साथ में, तो कहा हम सभी कन्याएं एक जगह पर रहती थी और बाबा का बंगला अलग होता था जहां बाबा साकार बाबा रहते थे। तो कहा बाबा कई बार हमारे पास आते थे और मुरली सुनाते थे, समय बिताते थे हमारे साथ में और फिर बाबा वापस अपने बंगले पर चले जाते थे। तो एक बार बाबा ऐसे आए और ये सभी कन्याएं छोटी छोटी वो बोर्डिंग स्कूल में जो थे सारी कन्याएं जो थी, तो साकार बाबा जब आए, बाबा ने मुरली चलाई, मुरली चलाने के बाद बाबा को कहीं जाना था, तो जैसे ही बाबा सबको ओम शांति करके नीचे उतरे और गाड़ी में बैठे तो दादी को अचानक ये आया कि नहीं बाबा आज नहीं जाओ, आज आप नहीं जाओ। इतना बाबा के प्रति उनका प्यार उमड़ रहा था तो बार बार बाबा को कहे, बाबा ने कहा नहीं बच्ची जाना पड़ेगा, आज बाबा नहीं रुक सकता है। तो बड़ी दादी जी ने कहा नहीं बाबा नहीं जाओ, आज नहीं जाओ। फिर भी बाबा ने कहा नहीं बाबा जाएगा, बाबा गाड़ी में बैठ गया। तो बाबा जब गाड़ी में बैठ गया तो उसके बाद दादी जी एकदम सामने जा करके लेट गई जमीन पर और कहा अगर जाना है तो गाड़ी मेरे ऊपर से जाएगी, नहीं तो नहीं जाना है। और तब तक वो उठे नहीं। दादी ने अपना अनुभव सुनाया कि इतना अंदर का प्यार बाबा के लिए उमड़ रहा था और वो प्यार ऐसा एक रस था कि जिस प्यार के अंदर जैसे ऐसी मैं समा गई थी कि जब मैं लेट गई मुझे अपना होश नहीं था, लेकिन वही भागवत में जो गायन आता है कि राधा ने जब कृष्ण को रोका था तो आगे लेट गई थी और कहा कृष्ण को कि रथ चलाना है तो मेरे ऊपर से लेकर जाओ, नहीं तो जाना नहीं। तो कहने का भावार्थ ये है कि भागवत के एक एक दृश्य का अनुभव हम सभी ब्राह्मण बच्चों का है, वत्सों का है। तो इसीलिए सुख को अपने जीवन के अंदर आने का अवसर देने के लिए हमें अपने जीवन में बाबा के साथ का ऐसे लगन की अगन जब हो तब अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, ये हमारे लिए ही कहा गया है। तो इसीलिए सुख को अपने जीवन में आने का अवसर दो। सुख आना चाहता है, आप जितना अपनी ही चीजों में उलझते रहेंगे, उलझन में फंसे रहेंगे तो सुख थोड़ी देर तो इंतजार करेगा, इंतजार करते करते चला जाएगा, फिर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सुख को जीवन में आने दो, वो आपकी सेवा करना चाहता है, आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अनुभव कराना चाहता है, लेकिन इन सारी प्रपंचों से अपने आप को मुक्त करना होगा, फ्री करना होगा, तब हम सुख और शांति, ये बच्चे जो पवित्रता के हैं, दादी जानकी जैसे कहती है कि पवित्रता के ये दो बच्चे सुख और शांति सदा हमारे साथ होंगे और सुख के दो साथी प्रेम और आनंद का अनुभव वो भी साथ होगा, ये उसके दो साथी है और पवित्रता के दो बच्चे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।